एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो इतिहास को देखने का हमारा चश्मा ही बदल सकती है।
बिल्कुल, किताब का नाम है सिल्क रोड्स, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इसके लेखक हैं पीटर फ्रैंकोपेन। और ये किताब मतलब सिर्फ रेशम के रास्तों की कहानी नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विश्व इतिहास को एक कह सकते हैं बिल्कुल नए सिरे से देखती है, पूरब के नजरिए से।
हाँ, और ये आज के समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगती है।
हाँ बिल्कुल। देखिए, हम अक्सर इतिहास को यूरोप या पश्चिम के इर्द गिर्द घूमता हुआ पढ़ते हैं ना, लेकिन ये किताब तर्क देती है कि हजारों सालों तक दुनिया का असली केंद्र वो मध्य एशिया और मध्य पूर्व रहा है।
अच्छा।
और आज जो हम चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हैं, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसे कहते हैं,
हाँ हाँ,
या फिर मध्य पूर्व में जो लगातार झगड़े चलते रहते हैं, तो ये किताब हमें बताती है ये सब कुछ नया नहीं है, ये एक बहुत लंबी कहानी का हिस्सा है। ये दिखाती है कि कैसी दुनिया का जो शक्ति संतुलन है वो शायद वापस पूरब की ओर जा रहा है।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो चलिए सबसे पहले लेखक पीटर फ्रैंकोपेन के बारे में थोड़ा जानते हैं। कौन है ये और इनका नजरिया इतना अलग क्यों है?
हाँ, तो पीटर फ्रैंकोपेन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं।
हाँ।
और वो वहाँ ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर बाइजेंटाइन रिसर्च के डायरेक्टर भी हैं।
बाइजेंटाइन रिसर्च मतलब पूर्वी रोमन साम्राज्य?
हाँ, वही पूर्वी रोमन साम्राज्य जो एक तरह से यूरोप और एशिया के बीच पुल जैसा था। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।
क्यों?
क्योंकि ज्यादातर पश्चिमी इतिहासकार तो पश्चिमी यूरोप पर ही ध्यान देते हैं। एग्जैक्टली, फ्रैंकोपेन की जो स्पेशलाइजेशन है वो पश्चिमी यूरोप में नहीं है, वो इसी पूर्वी रोमन साम्राज्य, बाल्कन, मध्य पूर्व और इस्लाम ईसाई संबंधों के इतिहास के एक्सपर्ट हैं। उनका ज्यादातर अकेडमिक काम इस्तांबुल, जो पुराना कॉन्स्टेंटिनोपल था, ऐसी जगहों पर केंद्रित रहा है जो दुनिया के ऐतिहासिक चौराहे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने पूछी कि नज़रिया अलग क्यों है, उन्हें कई भाषाएं आती हैं, रूसी, अरबी, कई और भी।
अच्छा, तो इसका मतलब वो उन सोर्सेस को सीधे पढ़ सकते हैं जिन्हें ज्यादातर पश्चिमी इतिहासकार मतलब अनदेखा कर देते हैं या पढ़ नहीं पाते।
हाँ बिल्कुल, जैसे फारसी दस्तावेज, अरबी, चीनी, इन तक उनकी सीधी पहुंच है। इससे उन्हें एक ऐसी खिड़की मिलती है इतिहास में झांकने की जो आमतौर पर बंद रहती है। वो उस इलाके के विशेषज्ञ हैं जिसे वो खुद दुनिया के इतिहास की कुंजी मानते हैं।
वाओ।
तो ये उन्हें इतिहास को एक बहुत ही यूनिक और कह सकते हैं ज्यादा बैलेंस्ड नजरिए से देखने की क्षमता देता है।
ये तो वाकई दिलचस्प है। अब किताब पर आते हैं, इसका मतलब मूल विचार क्या है, ये इतिहास को कैसे पलटती है?
देखिए, किताब का सबसे बड़ा दावा या कहें सेंट्रल आइडिया ये है कि हमें इतिहास को रीसेंटर करने की जरूरत है, मतलब अपना फोकस बदलने की जरूरत है।
रीसेंटर कैसे?
उनका कहना है कि हजारों सालों तक दुनिया की धड़कन यूरोप में नहीं बल्कि उन रास्तों के नेटवर्क पे धड़कती थी जिन्हें हम सिल्क रोड्स कहते हैं,
यानी मध्य एशिया, फारस, मध्य पूर्व।
हाँ, वही इलाका। ये वो जगह थी जहां संस्कृतियां मिलती थी, व्यापार होता था, नए नए धर्म फैलते थे और बड़े बड़े साम्राज्य बनते और बिगड़ते थे। असली एक्शन यहाँ था, यूरोप में नहीं।
तो ये उस आम कहानी को सीधी चुनौती है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि भाई इतिहास ग्रीस से शुरू हुआ, फिर रोम आया, फिर यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और फिर पश्चिम का दबदबा हो गया।
हाँ, पूरी तरह से। फ्रैंकोपेन कहते हैं कि पश्चिम का जो उदय है वो इतिहास के मंच पर काफी देर से हुई एक घटना है, बल्कि वो ये तर्क देते हैं कि ये ज्यादातर यूरोप की उन अमीर और शक्तिशाली पूर्वी सभ्यताओं से जुड़ने और किसी तरह उनके संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश का नतीजा था।
अच्छा, मतलब ये मजबूरी थी
एक तरह से। हाँ, ये किताब उन सभ्यताओं को जिन्हें इतिहास में अक्सर साइडलाइन कर दिया जाता है उन्हें उठाकर सेंटर स्टेज पर लाती है। ये बताती है कि असल में ज्यादातर समय तक दुनिया को इन्होंने ही आकार दिया है। ये एक तरह से इतिहास का पूरा नक्शा ही बदल देती है।
और ये कहानी कितनी पुरानी है, मतलब कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है ये?
ये बहुत लंबी कहानी है, 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी। ये शुरू होती है प्राचीन फारस और सिकंदर के जमाने से।
ओह, काफी पहले से।
हाँ, और आज के चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तक आती है। इसमें सब कुछ है, रेशम, मसाले, सोना चांदी का व्यापार, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम जैसे धर्मों का फैलना, बड़े बड़े साम्राज्यों का बनना बिगड़ना, फारसी, रोमन, मंगोल, ऑटोमन।
अच्छा, सब कवर किया।
हाँ, यहाँ तक कि ब्लैक डेथ जैसी महामारियां कैसे फैलीं, फिर यूरोप का उपनिवेशवाद, तेल की खोज और आज की जियोपॉलिटिक्स, कैनवस बहुत बड़ा है।
लेकिन क्या ये बहुत अकादमिक तो नहीं हो जाती, आम पाठक के लिए है?
यही इसकी खास बात है। कैनवस बड़ा है लेकिन इसे लिखा ऐसे गया है कि आम पाठक भी इसे आसानी से समझ सके, जुड़ सके। भाषा काफी आकर्षक है।
चलिए, ये अच्छी बात है। तो अब इस विशाल कहानी के कुछ अहम पड़ावों को देखते हैं। किताब के शुरुआती हिस्सा प्राचीन दुनिया पर फोकस करते हैं ना?
हाँ, पहला हिस्सा सिल्क रोड्स की नींव रखता है। और देखिए, फ्रैंकोपैन कहानी रोम से शुरू नहीं करते।
कहाँ से करते हैं फिर?
वो शुरू करते हैं प्राचीन फारस यानी आज के ईरान के अचमेनिड साम्राज्य से। उन्होंने पहली बार विशाल सड़कों का जाल बिछाया था, जैसे रॉयल रोड।
अच्छा, रोम से भी पहले?
हाँ, फिर सिकंदर महान की विजयों ने इस पूरे क्षेत्र में यूनानी संस्कृति, जिसे हेलेनिज्म कहते हैं, वो फैलाई। इससे एक तरह की साझा सांस्कृतिक पहचान बनी इस पूरे इलाके में।
और रोम का क्या रोल था इस शुरुआती दौर में? उसे कैसे दिखाया गया है?
रोम को एक ऐसी पश्चिमी ताकत के तौर पर दिखाया गया है जो पहले से मौजूद इस शक्तिशाली पूर्वी नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश कर रहा था।
मतलब रोम बाद में आया इस नेटवर्क में?
हाँ, और रोम का बेशुमार सोना चांदी पूरब से आने वाली लग्जरी चीजों को खरीदने में बह जाता था, जैसे चीन का रेशम, भारत के मसाले, अरब का लोबान।
अच्छा, ये दिखाता है कि पूरब कितना अमीर और अहम था उस वक्त।
बिल्कुल, और ये भी दिखाता है कि रोम का फारसी साम्राज्यों जैसे पार्थियन और ससानियन से लगातार झड़ा चलता रहता था। क्यों? इन्हीं व्यापार मार्गों पर कंट्रोल के लिए। तो साफ है कि पूरब कोई शांत बैठा दर्शक नहीं था, वो एक बहुत शक्तिशाली केंद्र था।
और इन्हीं रास्तों से सिर्फ सामान ही नहीं गया, विचार भी फैले, धर्म वगैरह।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसी से मैं विश्वासों की सड़क यानी रोड ऑफ फेथ्स का जिक्र आता है। ये रास्ते सिर्फ व्यापार के हाईवे नहीं थे, ये धर्मों के प्रसार के भी हाईवे बने।
जैसे
बौद्ध धर्म भारत से मध्य एशिया होते हुए चीन तक इन्हीं रास्तों से पहुंचा। ईसाई धर्म भी पश्चिम एशिया से फारस और उससे भी आगे तक फैला। तो आप सोचिए, जुड़ाव कितना गहरा था, सिर्फ आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक और धार्मिक भी।
इसके बाद आता है इस्लाम का उदय। किताब इसे एक बहुत बड़ी, मतलब टर्निंग पॉइंट मानती है।
हाँ, फ्रैंकोपैन इस्लाम के उदय को सिल्क रोड्स के इतिहास का शायद सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ मानते हैं। जो अरब विजय हुई, उन्होंने दुनिया का नक्शा और शक्ति संतुलन दोनों को मौलिक रूप से बदल दिया।
कैसे?
मध्यपूर्व में एक नई बहुत डायनामिक सभ्यता उभरी, जिसने अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के जंक्शन को कंट्रोल कर लिया। ये वो दौर था जिसे इस्लामी स्वर्ण युग कहते हैं, जब बगवाद ज्ञान और व्यापार का चमकता सितारा था। और उसी समय यूरोप अपने अंधकार युग से गुजर रहा था, ऐसा माना जाता है।
और इस दौर में उत्तर से भी कुछ नए खिलाड़ी मैदान में आए थे।
हाँ,
आपने वाइकिंग्स का जिक्र किया था।
हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है कहानी में। वाइकिंग्स, जिन्हें रस भी कहा जाता था, वो उत्तर में बाल्टिक सागर से यात्रा करते हुए काले सागर तक पहुंचे और वहां से कॉन्स्टेंटिनोपल और बगदाद तक।
वाइकिंग्स बगदाद तक? कमाल है।
हाँ, वो अपने यहाँ के फर और पकड़े हुए गुलामों के बदले में इस्लामी दुनिया से चांदी और रेशम खरीदते थे। सोचिए, इसने सिल्क रोड नेटवर्क को और भी उत्तर की तरफ फैला दिया।
इससे इस्लामी दुनिया की अर्थव्यवस्था की ताकत का पता चलता है।
बिल्कुल, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा था कि वो दूर दराज के इलाकों को भी अपनी ओर खींच रहा था। और इसी दौर में गुलामों का व्यापार भी बहुत बड़े पैमाने पर होता था, जिसे किताब गुलामों की सड़क, स्लेव रोड कहती है।
अगला बड़ा तूफान तो शायद मंगोलों का था, चंगेज खान।
हाँ, मंगोल, चंगेज खान और उसके वंशज। उनकी विजय इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में गिनी जाती हैं, लेकिन उनका एक अनपेक्षित नतीजा भी निकला।
वो क्या?
उन्होंने इतिहास का सबसे बड़ा जुड़ा हुआ जमीनी साम्राज्य बनाया। और इस विशाल साम्राज्य के अंदर एक दौर आया जिसे पैक्स मंगोलिका कहते हैं, यानी मंगोल शांति।
अच्छा, शांति मंगोलों के राज में।
हाँ, विडंबना देखिए, पहली बार पूरे यूरेशिया में यूरोप से चीन तक यात्रा करना और व्यापार करना इतना सुरक्षित और आसान हो गया था। मार्को पोलो की जो मशहूर यात्रा है, वो इसी दौर में हुई थी।
लेकिन इस आसान आवाजाही की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी, शायद प्लेग।
हाँ, और वो कीमत भयानक थी। इसी खुलेपन और आवाजाही के कारण ब्लैक डेथ यानी प्लेग की महामारी इन्हीं रास्तों से पूरब से पश्चिम तक बिजली की तेजी से फैली। कहते हैं यूरोप की एक तिहाई आबादी इसमें खत्म हो गई थी।
बाप रे।
ये दिखाता है कि कैसे जुड़ाव, ये कनेक्टिविटी, ये वरदान भी है और अभिशाप भी हो सकता है, दोनों पहलू हैं इसके।
और जब मंगोल साम्राज्य बिखर गया तब यूरोप ने क्या किया? यहीं से वो खोज का युग, एज ऑफ डिस्कवरी शुरू होता है।
बिल्कुल सही पॉइंट। मंगोल साम्राज्य टूटा और उधर मध्य पूर्व में दो बड़ी ताकतें जम गईं, ऑटोमन यानी तुर्क साम्राज्य और सफाविद यानी ईरानी साम्राज्य। इन्होंने जमीन के रास्ते यूरोप का पूरा पहुंचना लगभग नामुमकिन कर दिया।
अच्छा, रास्ता बंद हो गया एक तरह से।
हाँ, और फ्रैंकोपैन का तर्क है कि यही वो मजबूरी थी जिसने यूरोप को समुद्र के रास्ते खोजने पर मजबूर किया। कोलंबस और वास्को डी गामा वो असल में ज्ञान के प्यासे नहीं थे।
तो फिर क्या थे?
वो हताश थे। वो एशिया के मसालों और दौलत तक पहुंचने के लिए समुद्री रास्ता खोज रहे थे ताकि मुस्लिम बिचौलियों को बायपास कर सकें। तो ये पश्चिम के उदय को किसी महान योजना का नतीजा नहीं बल्कि एक तरह की मजबूरी और रिएक्शन के तौर पर दिखाता है।
ये बिल्कुल अलग नजरिया है। फिर आता है साम्राज्यवाद का दौर, जब यूरोपीय ताकतें दुनिया भर में फैलीं। सिल्क रोड्स का इलाका, उसका क्या हुआ तब? क्या वो अप्रासंगिक हो गया?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, यूरोप ने अमेरिका खोज लिया, नए समुद्री रास्ते बना लिए जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा, लेकिन जो जमीनी सिल्क रोड्स का इलाका था, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, वो अब भी शाही ताकतों की खिंचतान का मेन अखाड़ा बना रहा। यहीं पर वो मशहूर ग्रेट गेम खेला गया।
ग्रेट गेम, वो ब्रिटेन और रूस वाला?
हाँ, वही। मध्य एशिया पर दबदबे के लिए ब्रिटेन और रूस के बीच की जासूसी, रणनीतिक चालें, वो सब यहीं चला।
और अमेरिका से जो दौलत आई उसका इसमें क्या रोल था? आपने चांदी की सड़क का जिक्र किया था।
हाँ, अमेरिका से जो चांदी लूटी गई उसने यूरोप के विस्तार को फाइनेंस किया, पैसा दिया। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा किया और भारत एक बेस बन गया मध्य एशिया और पारस में अपनी ताकत दिखाने का। उधर रूस लगातार दक्षिण और पूरब की तरफ फैल रहा था। लड़ाई इसी बात की थी कि दुनिया के इस दिल पर किसका कंट्रोल हो।
और फिर एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल दिया, तेल।
हाँ, तेल। 20वीं सदी की शुरुआत में फारस यानी ईरान में तेल की खोज हुई। इसने इस इलाके की अहमियत को मतलब आसमान पर पहुंचा दिया। फ्रैंकोपैन तो पहले विश्व युद्ध को भी सिर्फ यूरोपीय लड़ाई नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये काफी हद तक ढहते हुए ऑटोमन साम्राज्य के बंटवारे और उसके संसाधनों, खासकर मेसोपोटेमिया यानी आज के इराक के तेल भंडारों पर कब्जे की लड़ाई भी थी।
अच्छा, पहले विश्व युद्ध का ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था।
हाँ, ये 19वीं सदी की शाही रस्साकशी को सीधे 20वीं सदी के बड़े युद्धों और यहाँ तक कि अर्मेनियाई नरसंहार जैसी भयानक त्रासदियों से जोड़ता है।
और किताब का आखिरी हिस्सा हमें आज के दौर में ले आता है, नई सिल्क रोड्स तक।
बिल्कुल, 20वीं और 21वीं सदी में भी लड़ाई जारी रही, बस अब मैदान में मुख्य खिलाड़ी तेल था, काला सोना और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ब्रिटेन की जगह अब अमेरिका इस इलाके की सबसे बड़ी बाहरी ताकत बन गया। अमेरिका की पूरी विदेश नीति पर आप देखेंगे तो मध्य पूर्व और मध्य एशिया के तेल और प्रभाव को सुरक्षित रखने की गहरी छाप दिखती है।
तो मतलब शीत युद्ध, फिर ईरान की क्रांति, अफगानिस्तान पर सोवियत हमला, खाड़ी युद्ध, ये सब इसी बड़ी कहानी के हिस्से हैं।
फ्रैंकोपैन इन सबको इसी लेंस से देखते हैं। ये सब बाहरी ताकतों की दुनिया के इस अहम ध्रुवीय पिंडू, पिवट पॉइंट को कंट्रोल करने की कोशिशों के अलग अलग अध्याय हैं। सदियों से यही चल रहा है, बस रूप बदल जाता है।
और अंत में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, यहां आकर कहानी पूरी होती है।
हाँ, यहीं आकर कहानी एक तरह से पूरा चक्कर लगाती है। चीन की BRI, जिसमें वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप में बंदरगाह, रेलवे, पाइपलाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खरबों डॉलर लगा रहा है, इसे फ्रैंकोपैन एक सोची समझी नए सिल्क रोड बनाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं।
मतलब चीन जानबूझकर इतिहास दोहरा रहा है।
हाँ, वो पुराने नेटवर्क को नए जमाने में नए तरीके से जिंदा कर रहा है, और ऐसा करके फ्रैंकोपैन का तर्क है वो दुनिया के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को एक बार फिर पूरब की ओर खींच रहा है। किताब का निष्कर्ष यही है कि 21वीं सदी की कहानी इन्हीं पुरानी और अब नई जिंदा हो रही सिल्क रोड्स पर लिखी जाएगी।
ये तो इतिहास का एक जबरदस्त, मतलब बहुत बड़ा नजरिया है। अगर हमें इस किताब के सबसे जरूरी संदेशों या थीम्स को समेटना हो तो वो क्या होंगे, कुछ मुख्य बातें?
हाँ, बिल्कुल। सबसे पहली और सबसे जोरदार बात तो यही है, यूरोप केंद्रित इतिहास को चुनौती देना। दुनिया सिर्फ पश्चिम की कहानी नहीं है, ज्यादातर समय यूरोप हाशिए पर था, केंद्र में नहीं।
ये तो मुख्य तर्क ही है।
हाँ, दूसरा, फारस यानी ईरान की केंद्रीय भूमिका। ये इलाका भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से हमेशा पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल रहा है, और इसकी किस्मत हमेशा दुनिया को प्रभावित करती रही है। आज भी देख लीजिए, ईरान में कुछ होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है।
सही बात है। और वो जुड़ाव वाली बात, कनेक्टिविटी।
हाँ, वो तीसरा अहम सबक है। ये जुड़ाव, ये रास्ते, ये दोधारी तलवार रहे हैं। इनसे व्यापार फैला, विचार फैले, कला फैली, समृद्धि आई।
लेकिन
साथ ही बीमारियां भी फैली, जैसे प्लेग, हिंसा फैली जैसे मंगोल आक्रमण, विनाशकारी विचारधाराएं भी फैली। आज भी हम देखते हैं ना, कैसे दुनिया के एक कोने की समस्या, मान लीजिए सप्लाई चेन में कोई रुकावट या कोई वायरस, पूरी दुनिया को हिला देती है।
हाँ बिल्कुल।
तो ये प्राचीन ग्लोबलाइजेशन था, जिसके फायदे और नुकसान दोनों थे, रचनात्मक भी विनाशकारी भी।
चौथा थीम शायद संसाधनों की लड़ाई है, ये तो आज भी उतना ही सच है।
बिल्कुल, चाहे वो रेशम हो, गुलाम हो, मसाले हों या आज का तेल, इन चीजों के बहाव को, इनके फ्लो को कंट्रोल करने की लड़ाई ही साम्राज्यों के फैलने, युद्धों और कूटनीति के पीछे की सबसे बड़ी ताकत रही है, हमेशा से।
और धर्म का क्या रोल रहा है इसमें?
वो पांचवां अहम थीम है, धर्म की भू राजनीतिक शक्ति। चाहे ईसाई धर्म हो, इस्लाम हो या बौद्ध धर्म, इनका प्रसार और इनके बीच के टकराव, ये सब सिल्क रोड्स के जरिए ही हुए, और इन्होंने साम्राज्यों को परिभाषित किया, लोगों को प्रेरित किया, और दुनिया का सांस्कृतिक और राजनीतिक नक्शा बार बार बदला।
और आखिर में वो बात जो आपने कही कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है।
हाँ, ये छठा और शायद सबसे सोचने पर मजबूर करने वाला संदेश है। इतिहास की चक्रीय प्रकृति, पश्चिम के दबदबे का धीरे धीरे कम होना, चीन का जबरदस्त उभार और दुनिया की मध्य पूर्व के तेल पर लगातार निर्भरता, ये सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे इतिहास का एक पुराना पहिया घूमकर वापस आ रहा है।
दुनिया का केंद्र फिर पूरब की ओर खिसक रहा है।
हाँ, ऐसा लगता है। हम भारत में भी तो आजकल मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया की बात करते हैं, है ना? ये उसी बदलते हुए समीकरण का हिस्सा है।
किताब में कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी जो पढ़ने वाले के दिमाग में अटक जाती हैं, कुछ ऐसे विचार या पंक्तियां जिनका सार हम साझा कर सकें, मतलब सीधे कोटेशन ना सही पर आइडियाज।
हाँ बिल्कुल है। जैसे एक जो मुख्य विचार है वो कुछ इस तरह है कि हमें सदियों से पढ़ाया गया है कि इतिहास का इंजन यूरोप में है, पर अगर आप दुनिया के नक्शे पर भाषाएं, धर्म, व्यापार के रास्ते देखें तो असली दिल, असली सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमेशा एशिया की रीढ़ की हड्डी में रहा है।
ये पाठक को अपना दिमागी नक्शा बदलने को कहता है।
बिल्कुल। एक और विचार शायद विचारों के व्यापार से जुड़ा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
हाँ बताइए।
वो ये कि विचारों का सफर हमेशा सामान के सफर जितना ही अहम रहा है। जिन रास्तों पर रेशम और मसाले चले, उन्हीं रास्तों पर बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म चले। इंसानों की आत्माओं की लड़ाई अक्सर उनके बाजारों की लड़ाई से बहुत पहले इन सड़कों पर लड़ी और जीती गई थी।
वाह, ये याद दिलाता है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये सोच और संस्कृति का भी खेल है।
बिल्कुल। और तीसरा विचार आज की दुनिया से सीधा जुड़ता है।
वो क्या है?
वो कुछ इस तरह है कि इराक, ईरान, अफगानिस्तान में जो आज के संघर्ष हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये दुनिया के धुरी बिंदु पर कंट्रोल के लिए जो 2000 साल पुरानी लड़ाई चल रही है, उसी के लेटेस्ट एपिसोड्स हैं।
आज की हेडलाइंस को समझना है तो आपको सिल्क रोड्स के इतिहास को समझना ही होगा।
ये तो बहुत पावरफुल कनेक्शन है, अतीत को सीधे आज की राजनीति से जोड़ देता है।
हाँ, यही इस किताब की ताकत है। ये सब जानने के बाद एक आम इंसान के लिए सवाल उठता है कि भाई इस ज्ञान का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है, क्या प्रैक्टिकल फायदे हैं इसके?
देखिए, इसके कई सीधे फायदे हैं। पहला तो यही कि ये हमें दुनिया की खबरों को, जियोपॉलिटिक्स को बेहतर समझने में मदद करता है।
कैसे?
जैसे चीन का BRI क्या है और क्यों है, मध्य पूर्व में हमेशा इतना तनाव क्यों रहता है, ईरान या अफगानिस्तान जैसे देश बड़ी ताकतों के लिए हमेशा से इतने अहम क्यों रहे हैं, इन सबके पीछे का जो लंबा इतिहास है वो समझ आता है। आप सिर्फ आज की घटना नहीं देखते, पूरी कहानी देखते हैं।
हाँ, कॉन्टेक्स्ट मिलता है।
बिल्कुल। दूसरा, ये हमारी सोच को खोलता है। वो जो एक छुपी हुई धारणा होती है ना कि पश्चिमी सर्वश्रेष्ठ है या इतिहास तो बस पश्चिम की ही देन है, ये उस धारणा को चुनौती देता है। हमें फारसी, अरबी, तुर्क, चीनी संस्कृतियों के योगदान और उनकी जटिलताओं का एहसास होता है। ये हमें सिखाता है कि दुनिया को अलग अलग नज़रियों से देखना कितना ज़रूरी है, और ये बात तो भारत जैसे विविधता वाले देश के लिए और भी सच है, है ना?
बिल्कुल सही कहा। और व्यापार या नीति, मतलब पॉलिसी, किस स्तर पर इसका कोई फ़ायदा है?
हाँ, तीसरा फायदा वही है, ये व्यापार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ देता है। हमें पता चलता है कि व्यापार के रास्ते, सप्लाई चेन्स ये हमेशा से कितने ज़रूरी रहे हैं। आज भी अगर स्वेज नहर में जहाज़ फंस जाए या हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसी जगहों पर कोई गड़बड़ हो तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है।
हाँ, ये तो हमने देखा है।
चौथा, ये नेताओं और पॉलिसी बनाने वालों के लिए भी एक बड़ा सबक है। इतिहास बार बार दिखाता है कि कैसे बड़ी बड़ी ताकतों ने इस सिल्क रोड्स वाले इलाके की जटिलताओं को कमा का है और फिर मुंह की खाई है।
जैसे?
जैसे अफगानिस्तान में ब्रिटेन को देख लीजिए, फिर सोवियत संघ को, फिर अमेरिका को, इराक में अमेरिका का हस्तक्षेप। इतिहास का गहरा ज्ञान शायद ज्यादा समझदारी भरी, ज्यादा सतर्क विदेश नीति बनाने में मदद कर सकता है। ये एक चेतावनी भी है।
सच कहूं तो इस किताब ने इतिहास को देखने का मेरा नज़रिया तो काफ़ी हद तक बदल दिया है। मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो शायद यही थी कि जिसे हम पश्चिम का पुनर्जागरण या खोज का युग कहकर इतना महिमामंडित करते हैं, वो शायद यूरोप की अपनी कोई अंदरूनी महानता नहीं बल्कि पूरब के धन तक पहुंचने की एक बेताब कोशिश ज़्यादा थी।
मजबूरी थी।
हाँ
हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। और मेरे लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण है जिसके बारे में हम आज इतनी बात करते हैं, ये कोई आज की कोई नई चीज़ नहीं है। दुनिया हजारों साल से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जिन ताकतों ने, जुड़ाव की ताकतें और टकराव की ताकतें जिन्होंने अतीत को शक्ल दी, वही ताकतें आज 21वीं सदी में एक नए रूप में फिर से उभर रही हैं। इस इतिहास को समझे बिना हम शायद भविष्य को ठीक से समझ ही नहीं सकते।
तो ये किताब एक तरह से
ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। ये आपको आराम से बैठकर इतिहास पढ़ने नहीं देती, ये आपको झकझोड़ती है। आपको अपनी पुरानी आरामदायक समझ को छोड़ने पर मजबूर करती है और दुनिया की एक ज्यादा सच्ची, भले ही ज्यादा जटिल, लेकिन ज्यादा सटीक तस्वीर अपनाने को कहती है। बहुत जरूरी किताब है आज के समय में।
बिल्कुल, मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।